नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा कल से हो रही है शुरू। परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी। और माघी पूर्णिमा पर प्रदेश भर में गंगा समेत अन्य नदियों और सरोवरों में पवित्र स्नान जारी।
अब समाचार विस्तार से।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्री ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक बजट पूर्व परामर्श बैठकें की और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। एक रिपोर्ट।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। उन्होंने 2019 में वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। अपने बजट भाषण में वह अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास की रूपरेखा के साथ साथ सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगी। बजट तैयार करते समय केंद्र सरकार द्वारा युवाओं समेत आम नागरिकों से अलग अलग माध्यमों के जरिए सुझाव मांगे गए थे, जिसकी झलक केंद्रीय बजट 2026-27 में देखने को मिलेगी। बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट से जुड़े सभी दस्तावेज यूनियन बजट मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 30 कॉलेज छात्रों से भी संवाद करेंगी। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। सत्र के दूसरे दिन 3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया है कि बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और 8 QRT भी सक्रिय रहेगी। बिहार विधानमंडल में 3 फरवरी को राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित एनडीए सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। एक रिपोर्ट।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 3,80,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। यह राशि पिछले बजट से लगभग 19% तक अधिक होगी। इस बार के बजट में मुख्य रूप से 7 निश्चय 3 पर सरकार का फोकस रहेगा। राज्य के विकास और बजट आकार में बढ़ोतरी के साथ गैर योजना स्थापना और प्रतिबद्ध खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का भी प्रस्ताव है। इसके चलते बजट में वेतन मद में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सरकार का मुख्य फोकस औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर होने की संभावना है। साथ ही लोगों की निगाहें उन घोषणाओं पर भी टिकी है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अनुपम कुमार।
राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य 30 अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि निर्माण एजेंसियों की एक छोटी टीम अगले 3 वर्षों तक मंदिर परिसर में रख रखाव कार्य के लिए तैनात रहेगी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के निर्माण पर अब तक लगभग 1,900 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
लगभग भुगतान जो हुआ है वह 1600 करोड़ का हो चुका है। 1800 करोड़ से 1900 करोड़ मोटा मोटी कुल मिलाकर के व्यय की संभावनाएं हैं, उसका ही आलेख लिया जा रहा है। इसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है GST का। तो इस कार्य को हम लोग प्राथमिकता पर फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में पूर्ण करना चाहेंगे।
संत रविदास की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। वे 14वीं शताब्दी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। यह दिवस हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु वाराणसी में गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर गोवर्धनपुर में एकत्र होते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। संत रविदास ने जाति का भेदभाव मिटाकर लोगों को एकजुट करने के लिए प्रोत्साहित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज प्रदेश भर में श्रद्धालु गंगा समेत अन्य नदियों और सरोवरों में पवित्र स्नान कर रहे हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में पुण्य स्नान को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज सुबह 4 बजे से अशोक राजपथ पर करगिल चौक से गायघाट तक सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस दौरान वाहन जीपी गंगा पथ से गुजर सकेंगे। आपातकालीन सेवा पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। शहर में बड़े व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में ठंड जारी रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत कई स्थानों के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सर्द हवाओं के कारण राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य भागों में विभिन्न स्थानों पर ठंड में बढ़ोतरी होगी। वहीं कई अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है।
अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
इधर केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि फरवरी महीने में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है और बारिश के भी कम होने के आसार हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि परीक्षा के आयोजन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 13,17,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी। अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक प्रवेश मिलेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। राज्य में इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर रेलवे ने दानापुर मंडल के अंतर्गत कुछ स्टेशनों और हॉल्ट पर मेमू सवारी गाड़ियों के ठहराव का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि मंडल के चंपापुर, सालिमपुर, करोटा, मझौली ग्राम और बुद्धदेवचक यादव नगर हॉल्ट पर मोकामा पटना मोकामा तथा झाझा दानापुर झाझा सवारी गाड़ियों का ठहराव 2 से 28 फरवरी तक दिया गया है। और अब आप श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी पटना से आज केंद्रीय बजट पर सजीव प्रसारण किया जाएगा। इसके कारण सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार का प्रसारण शाम 5 बजे से किया जाएगा। वहीं आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ विशेष बातचीत आज संध्या 4 बजे से प्रसारित होगी। भारत ने 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में न्यूजीलैंड को 46 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 271 रन बनाए। ईशान किशन ने सबसे अधिक 103 और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 63 रन की तूफानी पारी खेली। भारत की ओर से अर्शदीप ने 5 और अक्षर पटेल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। दरभंगा जिले में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राजधानी पटना में भी पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार पशुपालन विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार ने बताया है कि कटिहार में भी 100 से अधिक कौओं की मौत हो गई है। राज्य के कुछ अन्य स्थानों से भी पक्षियों के मरने की खबर है, जिसके कारण लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों के योगदान की तिथि 7 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले में राजस्व और खुफिया निदेशालय पटना की टीम ने 32 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 77 लाख रूपये से अधिक बताई गई है। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया है कि राज्य के 12 जिलों में 25 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों में लगभग 1200 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में खेलकूद और शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देने के लिए 5000 से 25000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य परियोजना निदेशक ने बताया कि इस राशि से खेलकूद के सामान खरीदे जाएंगे। पूर्णिया जिले के नगर थाना अध्यक्ष मुन्ना पटेल को कार्य में लापरवाही के आरोप में आईजी विवेकानंद ने निलंबित कर दिया है। दरभंगा जिले की स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में 5 लोगों को उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पटना जिले के बेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोइलवर पुल पर देर रात ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्वी चंपारण जिले में एसटीएफ ने 18,500 रुपए के जाली नोट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, पटना में नीट छात्रा हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री के फैसले की जानकारी दी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 3 निजी संस्थानों का फर्जीवाड़ा उजागर। सीट से अधिक विद्यार्थियों को जानबूझकर दिलाया शिक्षा ऋण। दैनिक भास्कर लिखता है, राज्य में 57,58,000 किसानों का अब तक नहीं बना फार्मर आईडी, भटक रहे किसान। प्रभात खबर ने लिखा है, 3 साल की रैली पर ब्रेक, मुनाफा वसूली से चांदी में 1,27,000 और सोने में 24,500 रुपए की महा गिरावट। आज अखबार की सुर्खी है, बच्चों की ड्रेस पर निखर रहा महिलाओं के हाथों का हुनर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा कल से हो रही है शुरू। परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी। और माघी पूर्णिमा पर प्रदेश भर में गंगा समेत अन्य नदियों और सरोवरों में पवित्र स्नान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।